खुदा तेरी बरकत तेरे फजल की नेमते हर रोज हर एक ईमानदार के लिए कसरत से खुदा मुहैया है। आज हम सब अपने आप को तेरी हजूरी में खाली करते हैं ताकि तेरे रूहुल कुद्दस से ताकि तेरी सच्चाई से भर जाएं जो तूने आज इस असली सुबह में हमारे लिए तैयार की है। हमारे दिलों की आंखों को रोशन कर दे, हमें सुनने की कुव्वत और ताकत दे और समझने की हिकमत और दनाई दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें इफिसियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रौ से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाअमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। पालूस रसूल इस हवाला में जब हम देखते हैं, हमने पिछले दिनों में सीखा कि हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसे ईमानदार कहा जाता है, वो मसीह यीशु में नया मखलूक है। पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया में इस तरह की बातों का सामना कर रहा है कि उनमें तफरका पाया जाता है कि हम मख्तून हैं तुम ना मख्तून हो, तुम नीचे दर्जे के हो हम ऊंचे दर्जे के हैं। यहां पर पालूस रसूल उन्हें वो बात याद दिलाता है और ये बात फखर के तौर पर मख्तून कहलाना फखर के तौर पर यहूदी कौम में पाया जाता था। आपको बाइबल में से दाऊद नबी की कहानी को आप बखूब जानते हैं, आपने संडे स्कूल में वो सीखी है, जाति जूलियट के बारे में, जब उसने कहा कि ये कौन नामख्तून है। ये लफ्ज वो गैर कौमों के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो खुदा पर भरोसा नहीं करते थे, जो बुत परस्ती या दूसरे खुदाओं पर भरोसा करते थे, जो लकड़ी के पत्थर के और फलां फलां उसकी बड़ी लिस्ट है। दाऊद क्या कहता है कि ये नामख्तून कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों पर लानत या ललकारता है। यहां पर पालूस रसूल इसका सादा सा आपको हल सादी सी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 11वीं आयत में वो इस बात को बयान करता है कि वो फर्क अब जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, वो रवायात वो नस्ल और कौम और उम्मत के लिहाज से जो फर्क है वो खत्म हो चुका है। वो कहता है कि अगर तुम उसी में जिंदगी गुजारते हो तो यहूदी इस बात का बयान करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं कि जो खतना नहीं कराता नामख्तून है, वो खुदा के वादों और उसके सारे किए हुए बरकत के इंतजामों से अलहदा है। और 12वीं आयत इसका साफ हमें कहती है कि अगले जमाने में मसीह से जुदा यानी कि उन तमाम नेमतों बरकतों से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादों के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। इसकी सादा सी जो मालूमात जो डेफिनेशन वो आप तक ये है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम सब मसीह यीशु में एक हैं, ख्वाह वो कोई भड़ा है, ख्वाह वो अंबीर है, का किसी भी वो मुल्क से है, किसी भी नस्ल से है, वो मसीह यीशु में क्या है, एक हैं। मेरे साथ एक हवाला देखें, आप पर ये इस भेद को बिल्कुल जाहिर कर देगा। कुर्सियों तीन बाप, यहाँ पर पालूस रसूल जब बात कर रहा है आसमानी जिंदगी गुजारने के बारे में, इस जमीन पर आसमानी जिंदगी जो उसने दी है अपनी जिंदगी से, आसमान की जिंदगी उसकी शहरियत को जाहिर करते हुए कहता है। देखिए मेरे साथ दसवीं आयत को देखें, नौवीं आयत में वो कहता है एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को, यानी कि तुमने मसीह यसू में नई इंसानियत को पहन लिया है। रोमियो 13 बाब में इसका हमें जिक्र मिलता है, लेकिन दसवीं आयत पर आपकी गौर दिलाना चाहता हूं। और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सेतोइकी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब कुछ और सब में से मुराद कि अब जो मसीह यसु में है वो नए मखलूक हैं, वो खुदा के खानदान के लोग हैं। और जो उम्मीद इस दुनिया में, वो जिंदा उम्मीद हमें हर एक ईमानदार को बख्शी गई है, हर एक ईमानदार को बख्शी गई है। और जैसे पहले आपको मिसाल दी है, हर रोज हमें उसके कलाम की भूख और प्यास रखने की जरूरत है। मूसा की जिंदगी से आप वाकिफ होंगे, मूसा की जिंदगी, मूसा नबी की जिंदगी 120 बरस की जिंदगी उसने जमीन पर गुजारी। उसके पहले 40 साल जो फारौन के माहौल में गुजरे, उसने बहुत सी तालीम हासिल की और फारौन की बेटी का बेटा होने के बायस बहुत सा अख्तियार उसके पास था और उस अख्तियार के बायस बहुत सा गरूर भी उसमें पाया जाता था। और उसने जब देखा कि उसकी कौम, यानी कि अब्रानी कौम के उसके हमजात, उसके जात में से उसके भाई, उसके कौमी भाई को मिस्री मार रहा है, तो उसने तैश में आके उसे कत्ल कर दिया और बियाबानों में भाग गया। और पहले 40 साल खुदा ने उसे बियाबानों में तोड़ा, खुदा ने उसे बियाबानों में सिखाया कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, तू मेरा चुना हुआ वसीला है। और बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बताती है कि खुदा ने कहा कि वो मेरे खानदान में सबसे ज्यादा रहम दिल है। और ये किस तरह हुआ? पहले उसने अपने आप को खाली किया, वो जब खुदावंद की तरफ लौटा तो उसने अपने आप को खाली किया। और 40 साल बाद जब खुदा ने देखा कि हां इसे और जरूरत है, और मूसा ने कहा कि अब मैं कुछ हूं, खुदा ने 40 साल और उसे बियाबानों में सिखाया, अपने आप को उस पर जाहिर किया, अपनी तालीम उसे दी, तब मूसा ने 80 साल बाद जाकर ये कहा कि हां अब मैं कुछ भी नहीं हूं। आज इस मॉर्निंग में, इस सुबह में, अगर आप में से यहाँ पर या कलीसिया में कोई सुनने वाला भाई, बेटा, बुजुर्ग, बच्चा है, अगर कोई अपने आप को कुछ समझता है तो खुदा इस वक्त हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम अपने आप को कुछ समझते हैं कि मेरा कुछ इलम या मेरी कुछ ताकत या मेरी कुछ दौलत, कुछ भी, खुदा हमें इस हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ना ही वो कर सकता है, क्योंकि मगरूर दिल से खुदा को नफरत है लेकिन वो फरोतनों को सरबुलंद करता है। हमें आज इस अस्सी सुबह में अपने दिल की हालत का जायजा लेने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी का सफर, जो मसीही जिंदगी का सफर, कितनी देर से जारी है, 20 साल से है, 10 साल से है, 40 साल से है। तो हमें आसान तरीके से खुदा बाप की मर्जी को सीखने की जरूरत है। आसान से मुराद खुदा बाप मैं अपने आप को खाली करता हूं ताकि यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल हूं और मैं होंगी। ये आसान तरीका है, लेकिन मुश्किल तरीका से हम मूसा की जिंदगी को देखते हैं। 80 साल तोड़ा गया और जब वो तैयार हुआ तो खुदा ने कहा कि अब जा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और ये किस तरह हुआ? खुदा के साथ 40 साल रफाकत रखने से। आपकी रफाकत भी उसके साथ होना जरूर है। मत देखें कि सिर्फ एतवार को चर्च चले गए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जो रूहानी जंग है और जिस मकसद के लिए उसने अपनी दुल्हन, जो के कलीसिया आप में से हर एक उसकी दुल्हन हो, जिसको उसने जमीन पर छोड़ा है, अपना काम मुकम्मल करके खुदा कादर मुतलक की दाहिने हाथ पर बैठा है। वो चाहता है कि जो मकसद आपके लिए है, जो मंसूबा इससे पहले कि आप इस जमीन पर अपनी सूरत अपने मां के पेट में पकड़ें, उसने आपके लिए एक मंसूबा रखा है। और वो ये है कि आप उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और उसका जलाल ये है कि मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि मैं अपने बाप की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करूं। जैसी उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और वो किन में? हर एक ईमानदार में। हर एक ईमानदार से वो चाहता है कि वो अपने रजाकराना तौर पर अपनी मर्जी से कहे के मैं हाजिर हूं, मैं तेरी बंदी, तेरा बंदा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी हजूरी में हाजिर हूं, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और उसके लिए हर रोज अपने आप को खाली करने की जरूरत है, जिसका मतलब है खाकसार बनाने की जरूरत है। और इस किताब में से, इस खत में से हम सीख रहे हैं सिट के बारे में। बैठना यानी कि खाकसार करना, और दूसरे लफ्जों में अपने आप को खाली करके कहना कि मैं हाजिर हूं, मुझ ना चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और वो कहता है कि हां, मैंने तुझे इसीलिए तैयार किया है, इसीलिए पैदा किया है, अब तू तैयार है कि मैं तुझे अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करूं, उठा खड़ी करूं। ख्वाह बहन है, ख्वाह भाई है, वो इस्तेमाल करना चाहता है। आगे जाकर हम देखेंगे 13वीं आयत से 15वीं आयत में उन बरकात को, उस दूरी को, जो दूरी खुदावंद खुदा ने दूर की है। मूसा जब तैयार हुआ तो खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और उसने उसकी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला। आज आप मत सोचें कि खुदा आपको मिस्र में भेजेगा कि किसी को छुड़ाए। आज आपकी जिंदगी में मिस्र का मतलब है, जिसे के उर्दू में जब इसका तर्जमा किया जाता है यूनानी जबान से, मतलब है दुनिया, दुनिया, जो इस दुनिया को कहा गया है, यानी कि खुदा की मोहब्बत से, इलम से और उसकी रफाकत से अलहदा जिंदगी गुजारने वाले लोगों को दुनिया का नाम कहा गया है। आज आपके घर में भी अगर कोई बहन या भाई, जो माँ या बेटा या कलीसिया में कोई भी ईमानदार है जो इस दुनिया में मगन है, तो उनके लिए दुआ करने की जरूरत है, उन तक ये पैगाम ले जाने की जरूरत है। और ये बड़ा मकसद है कि उसकी बादशाही जैसे आसमान पर, उसकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। उसकी बादशाही आए, उसकी बादशाही आपके दिलों में राज करना चाहती है, यानी कि वो चाहता है कि हर रोज आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो, उसकी मर्जी पूरी हो, ताकि वो बादशाही आप ही के दिलों में नहीं, बल्कि आपके घरानों में, आपकी कलीसिया में, आपके शहर में, आपके मुल्क में उसकी बादशाही आए। और वो चाहता है कि वो हर एक दिल के तख्त पर सुकूनत करे। आज अपने अपने दिलों के हालत को देखें, खाली जहां पर बैठे हैं, खाली कलीसिया में हैं और कहीं भी इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने दिल के تخت پر دیکھیں کہ آج دنیا کو بٹھایا ہے دنیا کی چیزوں کو یا اس بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ جانتے ہوئے اپنے تخت پر بٹھایا ہے اور اس نے یہ ہمیں خدمت دی ہے کہ اس کی مرضی کو پورا کریں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں اور اس پر ہم ختم کریں گے. رومیو دس باب یہاں پر بہت بہت گہری تعلیم ہے, لیکن آپ کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے 14 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا, مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں, اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر کیوں کر ایمان لائیں, اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں, اور جب تک وہ بھیجا نہ جائے وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں. چنانچہ لکھا ہے کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں. کیا ہی خوش نما, آپ کا جو مشن ہے جو مقصد ہے ایماندار ہوتے ہوئے زمین پر, ان تک جنہوں نے پہلے اس کی خوشخبری کو سنا نہیں ان تک اس کی خوشخبری کو اس کی آواز کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور آپ کے قدم اس دنیا جو مصر جو اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے اس دنیا میں خوشنما قدم اور اچھی چیزوں کی خبر دینے والے قدم ہوگے. آج تین باتیں اپنی زندگی میں لے کر جائیں. آپ کے دل کے تخت پر کون بیٹھا ہے؟ دوسری, آپ کس کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور تیسرا, آپ کا اس زمین پر مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل کے تخت پر ضرورت ہے خداوندوں کا خدا بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پوری مرضی اس کی پوری ہو. دوسرا, اس زمین پر کس کے لیے جیتے ہیں؟ اور تیسرا, اس خوشخبری کو اس مقصد کو جو ہر ایک ایماندار کو دیا گیا ہے پورا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے خاندان میں اپنے اپنے بہنوں بھائیوں بزرگ بچوں ماؤں سے پڑوسیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہی خوش نما ہیں ہمارے قدم. ہمارے سے مراد اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں. یہ وہ نئے نیک اعمال ہے کہ لوگوں تک بھلائی کا پیغام پہنچایا جائے. بس جو بھلائی کرنا جانتا ہے اگر نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے, اس کے لیے یہ ایسے ہے جیسے بدی میں زندگی بسر کرنا. آپ تک جو خوشخبری پہنچی ہے اس کے لیے دعا کریں. اپنے خاندانوں میں پوچھیں کہ کیا آپ کے دل کے تخت پر کون بیٹھا ہے, ایم ٹی وی دنیا کی چیزیں یا پھر وہ بادشاہ جس نے اپنی جان ہر ایک کے لیے جو آپ اپنے سے یہاں پر موجود ہے دی ہے. میرے گناہوں کے لیے اس نے اپنا جسم پٹوانے کے لیے دے دیا, اس نے اپنا منہ اس شرم کا سامنا کرنے کے لیے دے دیا, اس نے اپنا منہ ان سپاہیوں کو تھوک سے لبریز کرنے کے لیے دے دیا, اس نے اپنا سر کانٹوں کے تار سے چھلی ہونے کے لیے دے دیا تاکہ ہماری سوچ آزاد ہو جائے, تاکہ ہم اس خدا کو لامحدود جو خدا ہے اس کو محدود سوچ سے نہ دیکھیں. اپنے اپنے اس فرقوں میں سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اس زمین پر ہیں, ہمارا اس زمین پر مقصد کیا ہے, اور کیوں بائبل مقدس کہتی ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ اس کے ایلچی ہیں, وہ اس زمین پر مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں. بائبل مقدس اس پیغام کو نہیں کہتی کہ صرف کہ حوالہ جات فوتگی پر پڑے جائیں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ موت جو فتح کا لقمہ ہو چکی ہے اس فتح میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تین باتیں اپنی زندگی میں, ہمارے دل کے تخت پر کون بیٹھا ہے, और हम किसके लिए जी रहे हैं और हमारा मकसद क्या है, आए हम खुदावन के सुख चुके हैं। कादर मुतले खुदा, आज की ऐसी सुबह में अगर सुनने वालों में से कहीं भी आज ये आवाज पहुंच रही है, पहले उन्होंने कभी भी तेरी इस खुशखबरी को, इस मुफ्त बख्शिश को, जिसमें कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, किसी ईमान के सबब से नहीं, किसी नेकी के सबब से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह पर ईमान लाने से वो खुदा के घराने का बेटा और बेटी बन जाएगा। खुदावंद उनके दिलों की आंखों को रोशन कर और इस पैगाम को जो गुलाम खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा है, तेरा कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम जो तेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा करता है, खुदा बाप जो बीज बोया गया है कसरत से सौ गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।